का था, रूह वही रूप नया।
खौफनाक इमारत के भाग दो में आपने सुना कि रात के इतने गए पहर फयाज और इमरान इमारत के उसी कमरे में पहुंचे जहां उन्होंने पहले लाश देखी थी। इमरान ने वहां पर कुछ लोगों को देखा, कब्र का पत्थर हटता था और दो आंखें सबको घूरती रहती थीं। और थोड़ी ही देर बाद इमरान ने वहां पर एक नई लाश पड़ी हुई देखी। जब फयाज साथ आया तो लाश गायब थी। किसकी थी वो लाश, किसने किया उसे गायब, और इमरान ने ऐसा क्या देखा जो वो फयाज को नहीं दिखाना चाहता। सुनने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं भाग तीन में। एक बज गया था, फयाज इमरान को उसकी कोठी के करीब उतार कर चला गया। पाई बाग का दरवाजा बंद हो चुका था। इमरान फाटक हिलाने लगा। ऊंघते हुए चौकीदार ने हाँक लगाई, अरे प्यारे चौकीदार, मैं हूं तुम्हारा खादिम अली इमरान, MSc PhD लंदन। अरे कौन छोटे सरकार, चौकीदार फाटक के करीब आकर बोला, हुजूर मुश्किल है। दुनिया का हर बड़ा आदमी कह गया है कि वो मुश्किल ही नहीं जो आसान हो जाए। सरकार, बड़े सरकार का हुक्म है कि फाटक ना खोला जाए, अब बताइए। बड़े सरकार तक कन्फ्यूशियस का पैगाम पहुंचा दो। जी सरकार, चौकीदार बौखला गया। उनसे कह दो कि कन्फ्यूशियस ने कहा है कि अंधेरी रात में भटकने वाले ईमानदारों के लिए अपने दरवाजे खोल दो। मगर बड़े सरकार ने कहा है कि हाँ, बड़े सरकार, उन्हें चीन में पैदा होना था। खैर, तुम उन तक कन्फ्यूशियस का पैगाम जरूर पहुंचा दो। मैं क्या बताऊं, अब आप कहाँ कहाँ जाएंगे, चौकीदार कांपती हुई आवाज में बोला। फकीर ये सुहानी रात किसी कब्रिस्तान में बसर करेगा। मैं आपके लिए क्या करूं सरकार, दुआए मगफिरत करो। अच्छा टाटा, इमरान चला। और फिर आधे घंटे बाद वो टिप टॉप नाइट क्लब में दाखिल हो रहा था, लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक डिप्टी डायरेक्टर से उसकी मुठभेड़ हो गई, जो उसके बाप का क्लास फेलो भी रह चुका था। ओहो साहबजादे, तो तुम अब इधर भी दिखाई देने लगे हो।
जी हाँ सलाम, अक्सर फ्लैश खेलने चला आता हूँ, इमरान ने सिर झुकाकर बड़ी आज्ञाकारिता से कहा।
फ्लैश, तो क्या आप फ्लैश भी?
जी हाँ, कभी कभी नशे में दिल चाहता है।
ओह तो शराब भी पीने लगे हो।
अब वो क्या अर्ज करूँ, कसम ले लीजिए जो कभी तन्हा पी हो। अक्सर शराबी तवाइफें भी मिल जाती हैं जो फिलाए बगैर मानती ही नहीं।
लाहौल बिलाकुबत, तो तुम आजकल रहमान साहब का नाम उछाल रहे हो।
अब आप ही फरमाइए, इमरान ने मायूसी से कहा। जब कोई शरीफ लड़की ना मिले तो क्या किया जाए, वैसे कसम ले लीजिए जब कोई मिल जाती है तो मैं तवायफों पर लानत भेजकर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ।
शायद रहमान साहब को इसकी खबर नहीं।
खैर, अगर उनसे मुलाकात हो तो कन्फ्यूशियस का ये कलाम दोहरा दीजिएगा कि जब किसी ईमानदार को अपनी ही छत के नीचे पनाह नहीं मिलती तो वो अंधेरी गलियों में भौंकने वाले कुत्तों से दोस्ती कर लेता है।
डिप्टी डायरेक्टर उसे घूरता हुआ बाहर चला गया। इमरान ने सीटी बजाने वाले अंदाज में होंठ सिकोड़कर हॉल का जायजा लिया। उसकी नजरें एक मेज पर रुक गईं, जहां एक खूबसूरत औरत अपने सामने पॉट की बोतल रखे सिगरेट पी रही थी। गिलास आधे से ज्यादा खाली था। इमरान उसके करीब पहुंचकर रुक गया।
क्या मैं बैठ सकता हूँ लेडी जहांगीर, वो जरा झुक कर बोला।
ओह तुम, लेडी जहांगीर अपनी दाहिनी भौं उठाकर बोली, नहीं हरगिज नहीं।
कोई बात नहीं, कन्फ्यूशियस ने कहा था कि,
इमरान मासूमियत से मुस्कुरा कर बोला। मुझे कन्फ्यूशियस में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो झुंझला कर बोली।
तो DH लॉरेंस का एक जुमला सुन लीजिए।
मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम जाओ यहां से, लेडी जहांगीर गिलास उठाती हुई बोली,
ओह इसका ख्याल कीजिए कि आप मेरी मंगेतर भी रह चुकी हैं।
शट अप।
वल्ला आपकी मर्जी, मैं तो बस आपको ये बताना चाहता था कि आज सुबह ही से मौसम बहुत खुशगवार था।
वो मुस्कुरा पड़ी। बैठ जाओ, उसने कहा और एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। वो थोड़ी देर अपनी नशीली आंखें इमरान के चेहरे पर जमाए रही, फिर सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए आगे झुककर आहिस्ता से बोली,
मैं तो अब भी तुम्हारी हूं। मगर सर जहांगीर, इमरान मायूसी से बोला, दफन करो उसे।
हाय, तो क्या मर गए?
इमरान घबराकर खड़ा हो गया।
लेडी जहांगीर हंस पड़ी, तुम्हारी हिमाकतें बड़ी प्यारी होती हैं। वो अपनी बाईं आंख दबाकर बोली और इमरान ने शर्म से सर झुका लिया। क्या पियोगे? लेडी जहांगीर ने थोड़ी देर बाद पूछा।
दही की लस्सी।
दही की लस्सी? शायद तुम नशे में हो। ठहरिए, इमरान बौखला कर बोला, मैं 1 बजे के बाद सिर्फ कॉफी पीता हूं, 6 बजे से लेकर शाम के 12 बजे तक रम पीता हूं।
रम? अहा, तुम अपने टेस्ट के आदमी नहीं मालूम होते।
रम तो सिर्फ गंवार पीते हैं, लेडी जहांगीर ने मुंह से कोड़ कर कहा। नशे में मैं ये भूल जाता हूं कि मैं गंवार नहीं हूं।
तो आजकल तुम क्या कर रहे हो?
सब्र, इमरान ने लंबी सांस लेकर कहा। तुम जिंदगी के किसी भी हिस्से में संजीदा नहीं हो सकते, लेडी जहांगीर मुस्कुरा कर बोली।
ओह,
तो आप भी यही समझती हैं? इमरान की आवाज बेहद दर्दनाक हो गई।
आखिर मुझ में कौन से कीड़े पड़े हुए थे कि तुमने मुझसे शादी से इनकार कर दिया?
लेडी जहांगीर ने पूछा। हाँ, मैंने कब इनकार किया था? मैंने तो आपके वालिद साहब को सिर्फ 2-3 शेर ही तो सुनाए थे। अब मुझे क्या मालूम था कि उन्हें शेर व शायरी में दिलचस्पी नहीं है, वरना मैं नस्र में गुफ्तगू करता।
वालिद साहब की राय है कि तुम परले सिरे के अहमक और बदतमीज हो,
और चूंकि सर जहांगीर उनके हमउम्र हैं लिहाजा।
शट अप,
लेडी जहांगीर भन्ना कर बोली।
बहरहाल मैं तो यूं ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा,
इमरान की आवाज फिर दर्दनाक हो गई। लेडी जहांगीर गौर से उसका चेहरा देख रही थी।
क्या वाकई तुम्हें अफसोस है? उसने आहिस्ता से पूछा। ये तुम पूछ रही हो, और वो भी इस तरह जैसे तुम्हें मेरे बयान पर शक हो?
इमरान की आंखों में न सिर्फ आंसू छलक आए बल्कि बहने भी लगे।
ओ नो 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 माय डियर इमरान डार्लिंग, ये तुम क्या कर रहे हो?
लेडी जहांगीर ने उसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ा दिया।
मैं तो इसी गम में मर जाऊंगा,
वो आंसू पोंछता हुआ बोला।
ओहो नहीं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और मैं तो हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी।
वो दूसरा गिलास भर रही थी।
सब यही कहते हैं, कई जगह से रिश्ते भी आ चुके हैं। कई दिन हुए जस्टिस फारूक की लड़की का रिश्ता आया था, घर वालों ने इनकार कर दिया, लेकिन मुझे वो रिश्ता कुछ कुछ पसंद है।
पसंद है? लेडी जहांगीर हैरत से बोली, तुमने उनकी लड़की को देखा है?
हाँ, वही ना जो रीटा हेवर्थ स्टाइल के बाल बनाती है और आमतौर पर काला चश्मा लगाए रहती है।
जानते हो वो काला चश्मा क्यों लगाती है? लेडी जहांगीर ने पूछा।
नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी लगती है।
लेडी जहांगीर ने कहकहा लगाया। वो चश्मा इसलिए लगाती है क्योंकि उसकी एक आंख गायब है।
हैं?
इमरान उछल पड़ा। और शायद इसी वजह से तुम्हारे घर वालों ने ये रिश्ता मंजूर नहीं किया।
तुम उसे जानती हो?
इमरान ने पूछा। अच्छी तरह से, और आजकल मैं उसे बहुत खूबसूरत आदमी के साथ देखती हूँ। शायद वो भी तुम्हारी ही तरह अहमक होगा।
कौन है वो? कौन है वो? मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा,
इमरान बिफर कर बोला, फिर अचानक चौंक कर खुद ही बड़बड़ाने लगा।
लाहौल विला कुवत, भला मुझे इससे क्या मतलब?
बड़ी हैरत अंगेज बात है कि एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान कानी लड़की से शादी करे।
वाकई वाकई, ये दुनिया का 8वां अजूबा होगा।
क्या मैं उसे जानता हूँ?
इमरान ने कहा।
पता नहीं, कम से कम मैं तो नहीं जानती। और जिसे मैं नहीं जानती वो इस शहर के किसी आला खानदान का आदमी तो नहीं हो सकता। कब से देख रही हो उसे? यह कोई 15-20 दिन से। क्या वे भी यहां आते हैं? नहीं, मैंने उन्हें कैफे कामिनो में अक्सर देखा है। मिर्जा गालिब ने ठीक ही कहा है, नाला सरमाया यक आलमो आलम कफे खाक, आसमा बैजा एक उमरी नजर आता है मुझे। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? लेडी जहांगीर ने पूछा। पता नहीं, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा और ख्यालों में डूबकर मेज पर तबला बजाने लगा। सुबह तक बारिश जरूर होगी, लेडी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। सर, जहांगीर आजकल नजर नहीं आते, इमरान ने कहा। एक महीने के लिए बाहर गए हैं। गुड, इमरान मुस्कुरा कर बोला। अच्छा, क्यों? लेडी जहांगीर ने उसे अर्थपूर्ण नजरों से देखा। कुछ नहीं, कन्फ्यूशियस ने कहा है। अरे यार, मुझे बोर मत करो, लेडी जहांगीर चिढ़कर बोली। वैसे बाय द वे, क्या तुम्हारा रात भर का प्रोग्राम है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों? मैं कहीं तन्हाई में बैठकर रोना चाहता हूं। तुम बिल्कुल गधे हो, गधे, बल्कि गधे से भी बदतर। मैं भी यही महसूस करता हूं। क्या तुम मुझे अपनी छत के नीचे रोने का मौका दोगी? कन्फ्यूशियस ने कहा है। इमरान, प्लीज यार, शट अप। लेडी जहांगीर, मैं तो एक लंडूरे मुर्गे की तरह उदास हूं। चलो चलो उठो, लेकिन अपने इस कन्फ्यूशियस को यहीं छोड़कर चलो, बोरियत मुझे बर्दाश्त नहीं होती। तकरीबन आधे घंटे बाद इमरान लेडी जहांगीर के ख्वाबगाह में खड़ा उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। लेडी जहांगीर के जिस्म पर सिर्फ नाइट गाउन था, वो अंगड़ाई लेकर मुस्कुराने लगी। क्या सोच रहे हो? उसने भर्राई हुई आवाज में पूछा। मैं सोच रहा था कि आखिर किसी तिकोन के तीनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री के दो कोणों के बराबर क्यों नहीं होता। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी, लेडी जहांगीर की नशीली आंखों में झल्लाहट आने लगी। माय डियर लेडी जहांगीर, अगर मैं साबित कर दूं कि 90 डिग्री का कोण कोई चीज ही नहीं है, तो मैं दुनिया का बहुत बड़ा आदमी हो सकता हूं। अरे जहन्नुम में जाओ, लेडी जहांगीर बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाई। जहन्नुम? क्या तुम्हें जहन्नुम पर यकीन है? इमरान, मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। लेडी जहांगीर, अब तो मुझे नींद आ रही है। सर, जहांगीर के बेडरूम में उनका स्लीपिंग सूट है, पहन लो। शुक्रिया। ख्वाबगाह किधर है? सामने वाला कमरा, लेडी जहांगीर ने कहा और बेचैनी से टहलने लगी। इमरान ने सर जहांगीर की ख्वाबगाह में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेडी जहांगीर टहलती रही। 10 मिनट गुजर गए। आखिर वो झल्लाकर सर जहांगीर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर आई, धक्का दिया, लेकिन अंदर से चिटकनी चढ़ा दी गई थी। क्या करने लगे इमरान? उसने दरवाजा थपथपाना शुरू किया, लेकिन जवाब नदारद। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे इमरान खर्रांटे भर रहा हो। उसने दरवाजे से कान लगा दिए। सच में खर्रांटों की ही आवाज थी। फिर दूसरे लम्हे वो एक कुर्सी पर खड़ी होकर दरवाजे के ऊपरी शीशे से कमरे के अंदर झांक रही थी। उसने देखा कि इमरान कपड़े और जूते पहने हुए सर जहांगीर के पलंग पर पड़ा खर्रांटे ले रहा था और उसने बिजली भी नहीं बुझाई थी। वो अपने होठों को दायरे की शक्ल में सिकोड़े इमरान को किसी भूखी बिल्ली की तरह घूर रही थी। फिर उसने हाथ मारकर दरवाजे का शीशा तोड़ दिया। नौकर शायद सर्वेंट क्वार्टर्स में सोए हुए थे, वरना शीशे के छनाके उनमें से किसी एकाद को जरूर जगा देते। ये बात और है कि इमरान की नींद पर उनका जर्रा बराबर भी असर नहीं हुआ। लेडी जहांगीर ने अंदर हाथ डालकर चिटकनी नीचे गिरा दी। नशे में तो वो थी ही, जिस्म का पूरा जोर दरवाजे पर दे रखा था। चटकनी गिरते ही दोनों पट खुल गए और वो कुर्सी समेत ख्वाबगाह में जा गिरी। इमरान ने उनींदी आवाज में कराह कर करवट बदल ली और बड़बड़ाने लगा।
सिंथेटिक गैस की बू कुछ मीठी मीठी सी होती है।
पता नहीं वो जाग रहा था या ख्वाब देख रहा था। लेडी जहांगीर फर्श पर बैठी अपनी पेशानी पर हाथ फेर कर उसे बिसूर रही थी। 2-3 मिनट बाद वो उठी और इमरान पर टूट पड़ी। सुअर कमीने, तुम्हारे बाप का घर है, उठो निकलो यहाँ से। वो उसे बुरी तरह झिंझोड़ रही थी। इमरान बौखला कर उठ बैठा। है क्या, क्या हुआ, भाग गए क्या सब, दूर आ जाओ यहाँ से। लेडी जहांगीर ने उसका कॉलर पकड़कर झटका मारा। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। इमरान अपना गरेबान छुड़ाकर फिर लेट गया। इस बार लेडी जहांगीर ने उसे बालों से पकड़कर उठाया। क्या अभी अभी गया नहीं, अभी गया नहीं। इमरान झल्ला कर उठ बैठा। सामने ही आदम कद आईना रखा हुआ था। ओ तो आप हैं, वो आईने में अपना अक्स देखकर बोला। फिर इस तरह मुक्का बनाकर उठा जैसे उस पर हमला करेगा। वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरफ बढ़ रहा था जैसे किसी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रहा हो। फिर अचानक सामने से हटकर एक किनारे पर चलने लगा। आईने के करीब पहुंचकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। लेडी जहांगीर की तरफ देखकर इस तरह होठों पर उंगली रख ली जैसे वो आईने के करीब नहीं बल्कि किसी दरवाजे से लगा खड़ा हो और इस बात का इंतजार कर रहा हो कि जैसे ही दुश्मन दरवाजे से कदम रखेगा वो उस पर हमला कर बैठेगा। लेडी जहांगीर हैरत से आंखें फाड़े उसकी हरकत देख रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, इमरान ने पैंतरा बदलकर आईने पर एक घूंसा रसीद कर दिया। हाथ में जो चोट लगी तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वो यकायक होश में आ गया हो। अरे लाहौल बिला कुवत, वो आंखें मलकर बोला और खिसियानी हंसी हंसने लगा। अरे वो तो और फिर लेडी जहांगीर को भी हंसी आ गई लेकिन वो जल्दी ही संजीदा हो गई। तुम यहाँ क्यों आए थे?
मैं शायद भूल गया, मैं तो शायद उदास था। लेडी जहांगीर तुम तो बहुत अच्छी हो, मैं रोना चाहता हूँ।
अपने बाप की कब्र पर रोना, निकल जाओ यहाँ से।
लेडी जहांगीर कन्फ्यूशन,
शट अप। लेडी जहांगीर इतनी जोर से चीखी कि उसकी आवाज भर्रा गई।
जी बहुत बेहतर,
इमरान आज्ञाकारिता के अंदाज में सिर हिलाकर बोला। गोया लेडी जहांगीर ने बहुत संजीदगी और नरमी से जैसे उसे कोई नसीहत की थी। चले जाओ यहाँ से।
जी बहुत अच्छा,
इमरान ने कहा और इस कमरे से लेडी जहांगीर की ख्वाबगाह में चला गया। वो उसकी मसहरी पर बैठने जा ही रहा था कि लेडी जहांगीर तूफान की तरह उसके सिर पर पहुंची। अब मजबूरन मुझे नौकरों को जगाना पड़ेगा, उसने कहा।
ओहो तुम कहाँ तकलीफ करोगी, मैं जगाई देता हूँ।
कोई खास काम है? इमरान मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी तुम्हें।
ओके, मगर
किसी से इसका जिक्र मत करना वरना पुलिस। खैर मैं मरने के लिए तैयार हूँ, अगर छुरी तेज ना हो तो तेज कर दूँ। रिवॉल्वर से मारने का इरादा है तो मैं उसकी राय आपको नहीं दूंगा, सन्नाटे में आवाज दूर तक फैलती है। अलबत्ता जहर ठीक रहेगा।
इमरान खुदा के लिए।
अरे खुदा क्या, मैं उसके गुलामों के लिए भी अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ जो मिजाजे यार में आए।
तुम चाहते क्या हो?
दो चीजों में से एक।
क्या?
मौत या सिर्फ 2 घंटे की नींद।
क्या तुम गधे हो?
तुम पूछती तो मैं बिल्कुल बता देता। अरे पहले ही बता देता कि मैं बिल्कुल गधा हूं। अरे जहन्नुम में जाओ। लेडी जहांगीर और ना जाने क्या बकती हुई सर जहांगीर की ख्वाबगाह से चली गई। इमरान ने उठकर अंदर से दरवाजा बंद किया, जूते उतारे और कपड़ों समेत बिस्तर में घुस गया। ये सोचना कतई गलत ना होगा कि इमरान के कदम बिना मकसद टिप टॉप नाइट क्लब की तरफ उठ गए थे। उसे पहले ही से खबर थी कि सर जहांगीर आजकल शहर में मुकीम नहीं है और वो ये भी जानता था कि ऐसे मौकों पर लेडी जहांगीर अपनी रातें कहां गुजारती हैं। ये भी हकीकत थी कि लेडी जहांगीर किसी जमाने में उसकी मंगेतर रह चुकी थी और खुद इमरान की हिमाकतों की वजह से ये शादी न हो सकी। सर जहांगीर की उम्र लगभग 60 साल जरूर रही होगी लेकिन जिस्म की मजबूती के कारण वे बहुत ज्यादा बूढ़े नहीं मालूम होते थे। इमरान दम साधे लेटा रहा। आधा घंटा गुजर गया। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी और फिर उठकर ख्वाबगाह की रोशनी बंद कर दी। पंजों के बल चलता हुआ लेडी जहांगीर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर आया, जो अंदर से बंद था। अंदर गहरी नीली रोशनी थी। इमरान ने दरवाजे के शीशे से अंदर झांका। लेडी जहांगीर मसहरी पर औंधी पड़ी बेखबर सो रही थी। इमरान पहले की तरह एहतियात से चलता हुआ सर जहांगीर की लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। यहां अंधेरा था। इमरान ने जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी कर दी। काफी लंबा चौड़ा कमरा था। चारों तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां थीं और दरमियान में तीन लंबी लंबी मेजें। बहरहाल ये निजी लाइब्रेरी से ज्यादा पब्लिक रीडिंग रूम मालूम हो रही थी। पूर्वी सिरे पर लिखने की एक मेज थी। इमरान सीधा उसकी तरफ गया, जेब से वो पर्चा निकाला जो उसे उस खौफनाक इमारत से रहस्यमय तरीके से मरने वाले के पास मिला था, और वो उसे गौर से देखता रहा। मेज पर रखे हुए कागजात उलटने पलटने लगा। थोड़ी देर बाद वो हैरत से आंखें फाड़े एक राइटिंग पैड के लेटर हेड की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में दबे हुए कागज में और उसमें कोई फर्क न था। दोनों पर एक ही किस्म के निशान थे, और ये निशान सर जहांगीर के पूर्वजों के कारनामों की यादगार थे, जो उन्होंने मुहलिया दौरे हुकूमत में सरंजाम दिए थे। सर जहांगीर इन निशानों को अब तक इस्तेमाल कर रहे थे। उनके कागजात पर उनके नाम की जगह अक्सर यही निशान छपे हुए रहते थे। इमरान ने मेज पर रखे कागजात को पहली सी तरतीब में रख दिया और चुपचाप लाइब्रेरी से निकल आया। लेडी जहांगीर के बयान के मुताबिक सर जहांगीर एक माह से गायब थे। तो फिर इमरान का जहन चौकड़ियां भरने लगा। आखिर उन मामलात से जहांगीर का क्या ताल्लुक? ख्वाबगाह में वापस आने से पहले उसने एक बार फिर उस कमरे में झांका जहां लेडी जहांगीर सो रही थी, और मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला आया जहां उसे खुद सोना था। सुबह 9 बजे लेडी जहांगीर उसे बुरी तरह झंझोड़ झंझोड़ कर जगा रही थी। वेल डन, वेल डन! इमरान हड़बड़ा कर उठ बैठा और मसहरी पर उकड़ू बैठ कर इस तरह ताली बजाने लगा जैसे किसी खेल के मैदान में बैठा हुआ खिलाड़ियों को दाद दे रहा हो। अरे ये क्या बेहूदगी है, लेडी जहांगीर झुंझला कर बोली। सॉरी, वो चौंक कर लेडी जहांगीर को हैरानी भरी नजरों से देखता हुआ बोला। हेलो लेडी जहांगीर, फरमाइए, सुबह ही सुबह कैसे तकलीफ की? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेडी जहांगीर ने तेज लहजे में कहा। हाँ हो सकता है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और अपने नौकरों के नाम ले लेकर उन्हें पुकारने लगा। लेडी जहांगीर उसे चंद लम्हे घूरती रही और फिर बोली, बराहे करम अब तुम यहां से चले जाओ, वरना हैं? तुम मुझे मेरे घर से निकालने वाली कौन होती हो? इमरान उछलकर खड़ा हो गया। अरे ये तुम्हारे बाप का घर है, लेडी जहांगीर की आवाज बुलंद हो गई। इमरान चारों तरफ हैरानी से देखने लगा, फिर इस तरह उछला जैसे अचानक सिर पर कोई चीज गिर पड़ी हो। है? अरे मैं कहां हूं? कमरा तो मेरा नहीं मालूम होता। अब जाओ वरना मुझे नौकरों को बुलाना पड़ेगा। अब नौकरों को बुलाकर क्या करोगी? मेरे लायक कोई खिदमत? वैसे तुम गुस्से में बड़ी हसीन लगती हो। शट अप! अच्छा अच्छा नहीं कहूंगा, इमरान बिसूर कर बोला और फिर मसहरी पर बैठ गया। लेडी जहांगीर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरती रही। उसकी सांस फूल रही थी और चेहरा सुर्ख हो गया था। इमरान ने जूते पहने, खूंटी से कोट उतारा और फिर बड़े इत्मीनान से लेडी जहांगीर की सिंगार मेज पर जम गया और फिर अपने बाल दुरुस्त करते वक्त इस तरह गुनगुना रहा था जैसे सचमुच अपने ही कमरे में बैठा हो। लेडी जहांगीर दांत पीस रही थी, लेकिन साथ ही बेबसी के भाव भी उसके चेहरे पर उमड़ आए थे। ओके, ठठा! इमरान दरवाजे के करीब पहुंचकर मुड़ा और अहमकों की तरह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। उसका जहन बिल्कुल साफ हो गया था। पिछली रात की जानकारी ही उसकी तसल्ली के लिए काफी थी। मरे हुए आदमी के हाथ में रहस्यमय ढंग से सर जहांगीर के लेटर पैड का पाया जाना इस बात की दलील है कि इस मामले से सर जहांगीर का कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर है, और शायद सर जहांगीर शहर में ही मौजूद हो सकता है लेडी जहांगीर ये जानती ना हो। अब इमरान को उस आकर्षक आदमी की फिक्र थी जिसे इन दिनों जज साहब की लड़की के साथ देखा जा रहा था।
ठीक है, देख लिया जाएगा,
वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। उसका इरादा तो नहीं था कि घर की तरफ जाए, मगर जाना ही पड़ा। घर गए बगैर मोटरसाइकिल किस तरह मिलती? उसे ये भी तो मालूम करना था कि वो खौफनाक इमारत दरअसल थी किसकी। अगर उसका मालिक गांव वालों के लिए अजनबी था तो जाहिर है कि उसने वो इमारत खुद ही बनवाई होगी, क्योंकि इमारत बहुत ही पुराने ढंग की बनी हुई थी। लिहाजा ऐसी सूरत में यही सोचा जा सकता था कि मौजूद मालिक ने भी उसे किसी से खरीदा ही होगा। घर पहुंचकर इमरान की शामत ने उसे पुकारा। बड़ी भी शायद पहले ही से भरी बैठी थी। इमरान की सूरत देखते ही आग बबूला हो गई।
कहां था रे कमीने सुअर?
ओहो अम्मा भी, गुड मॉर्निंग डियर रेस्ट।
मॉर्निंग के बच्चे, मैं पूछती हूँ रात को कहां था?
अब अरे वो अम्मा भी, अब मैं क्या बताऊं, अब वो हजरत मौलाना बल्कि मुर्शीदी और मौलाई सैयदाना जिगर मुरादाबादी है ना, अरे लाहौल बिला कुवत, मतलब ये है कि मौलवी तफज्जुल हुसैन क़िबला की खिदमत में रात में हाजिर था। अल्लाह अल्लाह, क्या बुजुर्ग हैं अम्मा भी। बस यही समझ लीजिए कि मैं आज से नमाज शुरू कर दूंगा।
अरे कमीने कुत्ते, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, हैं?
बड़ी भी झुंझलाई हुई और मुस्कुराहट के साथ बोली,
अरे तौबा अम्मा भी। इमरान ने जोर से अपना मुंह पीटा, आपके कदमों के नीचे तो मेरी जन्नत है।
और फिर सुरैया को आता देखकर इमरान ने जल्द से जल्द वहां से खिसक जाना चाहा। बड़ी भी बराबर बड़बड़ाई जा रही थी,
अम्मा भी अम्मा भी,
आप खामखा अपनी तबीयत खराब कर रही हैं, दिमाग में खुश्की चढ़ जाएगी, सुरैया ने आते ही कहा। और ये भाईजान, आप उनको खुद के हवाले छोड़ दीजिए। इमरान कुछ ना बोला, अम्मा बी को बड़बड़ाता छोड़कर तो जा नहीं सकता था। न जाने शर्म भी नहीं आती, बाप की पगड़ी उछालते फिर रहे हैं। सुरैया ने अम्मा बी के किसी मिसरे पर गिरह लगाई।
तो क्या अब्बा जान ने पगड़ी बांधनी शुरू कर दी है?
इमरान आनंदित लहजे में चीखा। अम्मा भी दिल की मरीज थी, कमजोर भी थी, लिहाजा उन्हें गुस्सा आ गया। ऐसी हालत में हमेशा उनका हाथ जूती की तरफ जाता था। इमरान इत्मीनान से जमीन पर बैठ गया और फिर तड़ातड़ की आवाज के साथ और कुछ नहीं सुन सका। अम्मा भी जब उसे जी भर कर पीट चुकी तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। सुरैया उन्हें दूसरे कमरे में घसीट कर ले गई। इमरान की चचाजाद बहनों ने उसे घेर लिया। कोई उसके कोट की धूल झाड़ रही थी और कोई टाई की गांठ दुरुस्त कर रही थी। एक ने सर पर चंपी शुरू कर दी। इमरान ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया और इस तरह खड़ा रहा जैसे वो बिल्कुल तन्हा हो। दो चार कश लेकर उसने अपने कमरे की राह ली। उसकी चचाजाद बहनें जरीना और सूफिया एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं। इमरान ने कमरे में आकर फेल्ट हैट एक तरफ उछालकर उतार दी, कोट मसहरी पर फेंका और एक आराम कुर्सी पर गिरकर ऊंघने लगा। रात वाला कागज अब भी उसके हाथ में दबा हुआ था। उस पर कुछ हिंद से लिखे हुए थे, कुछ पैमाइशें थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी बढ़ई ने कोई चीज गढ़ने के लिए उसके मुख्तलिफ हिस्सों के अनुपात का अंदाजा लगाया हो। जाहिरा तौर पर उस कागज के टुकड़े की कोई अहमियत तो नहीं थी, लेकिन उसका ताल्लुक एक अज्ञात लाश से था। ऐसे आदमी की लाश जिसका कत्ल बड़ी रहस्यमय स्थिति में हुआ था, और इन हालात में यह दूसरा कत्ल था। इमरान को इस सिलसिले में पुलिस या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की व्यस्तता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने फयाज से भी मालूम करने की कोशिश नहीं की थी कि पुलिस ने इन हादसों के बारे में क्या राय कायम की है। इमरान ने कागज का टुकड़ा अपने सूटकेस में डाल दिया और दूसरा सूट पहनकर दोबारा बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल उसी कस्बे की तरफ जा रही थी जहां वो खौफनाक इमारत थी। कस्बे में पहुंचकर इस बात का पता लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई कि वो इमारत पहले किसकी मिल्कियत थी। इमरान उस खानदान के एक जिम्मेदार आदमी से मिला जिसने इमारत जज साहब को बेच दी थी।
अब से 8 साल पहले की बात है, अयाज साहब ने वो इमारत हमसे खरीदी तो थी और मरने से पहले वे उसे कानूनी तौर पर शहर के किसी जज साहब के नाम कर गए थे, उसने बताया।
अयाज साहब कौन थे, पहले कहाँ रहते थे, इमरान ने सवाल किया।
हमें इस बारे में तो कुछ नहीं मालूम, इमारत खरीदने के बाद 3 साल तक जिंदा रहे, लेकिन किसी को कुछ मालूम ना हो सका कि वो कौन थे और पहले कहाँ रहते थे। उनके साथ एक नौकर था जो अब भी इमारत के सामने वाले हिस्से में रहता है।
यानी कब्र का वो मुजाविर, इमरान ने कहा और बूढ़े आदमी ने हाँ में सिर हिला दिया। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर बोला,
वो कब्र भी अयाज साहब ही ने खोजी थी। हमारे खानदान वालों को तो इसकी जानकारी भी नहीं थी कि वहां पहले कभी कोई कब्र रही है। हमने अपने बुजुर्गों से कभी इस बारे में कुछ सुना तो नहीं।
ओह, भला कब्र किस तरह खोजी गई थी, इमरान घूरता हुआ बोला।
उन्होंने ख्वाब में देखा था कि इस जगह कोई शहीद मर्द दफन है, दूसरे ही दिन कब्र बनानी शुरू कर दी।
खुद ही बनानी शुरू कर दी, इमरान ने हैरत से पूछा।
जी हाँ, वे सारा काम खुद ही करते थे, काफी दौलतमंद भी थे, लेकिन उन्हें कंजूस नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे दिल खोलकर खैरात करते थे।
जिस कमरे में लाश मिली थी उसकी दीवारों पर प्लास्टर है, लेकिन दूसरे कमरों में नहीं है, इसकी क्या वजह हो सकती है।
प्लास्टर भी अयाज साहब ने किया था,
खुद ही।
जी हाँ।
इस पर तो यहाँ कस्बे में काफी बातचीत हुई होगी।
अरे कतई नहीं जनाब, अब भी यहाँ लोगों का यही ख्याल है कि अयाज साहब कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, और मेरा ख्याल है कि उनका नौकर भी बुजुर्गी से खाली नहीं है।
कभी ऐसे लोग भी अयाज साहब से मिलने आए थे जो यहाँ वालों के लिए अजनबी रहे हों।
जी नहीं, मुझे याद तो नहीं आता। मेरा ख्याल है कि उनमें से कभी कोई मिलने के लिए तो नहीं आया।
अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान बूढ़े से हाथ मिलाकर अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। अब वो उसी इमारत की तरफ जा रहा था और उसके जहन में एक साथ कई ख्याल थे। अयाज ने वो कब्र खुद ही बनवाई थी और कमरे में प्लास्टर भी खुद ही किया था। क्या वो एक अच्छा राजगीर भी था, कब्र वहां पहले नहीं थी, वो अयाज की ही खोज थी। उसका नौकर आज भी कब्र से चिमटा हुआ है, आखिर क्यों, उसी एक कमरे में प्लास्टर करने की क्या जरूरत थी। इमरान इमारत के करीब पहुंच गया। बाहरी बैठक जिसमें कब्र का मुजाविर रहता था खुली हुई थी और वो खुद भी वहां मौजूद था। इमरान ने उस पर एक उचटती हुई सी नजर डाली। वो अधेड़ उम्र का मजबूत कदकाठी का आदमी था, चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखें सुर्ख थीं। शायद वो हमेशा ही ऐसी रहती थी। इमरान ने 2-3 बार जल्दी जल्दी पलकें झपकाईं और फिर उसके चेहरे पर पुराने बेवकूफी के लक्षण उभर आए।
क्या बात है,
उसे देखते ही नौकर ने ललकारा। मुझे आपकी दुआ से नौकरी मिल गई है, सोचा कुछ आपकी खिदमत करता चलूं, इमरान विनम्र लहजे में बोला।
भाग जाओ,
कब्र का मुजाविर सुर्ख सुर्ख आंखें निकालने लगा। अरे अब इतना भी न तड़पाइए, बस आखिरी दरख्वास्त करूंगा, इमरान हाथ जोड़कर बोला।
कौन हो तुम, क्या चाहते हो,
मुजाविर यकायक नर्म पड़ गया। बस एक लड़का, बस एक लड़के के बगैर घर सूना सूना लगता है। या हजरत 30 साल से बच्चे की आरजू है।
30 साल, तुम्हारी क्या उम्र है,
मुजाविर उसे घूरने लगा। 25 साल।
भागो, मुझे लौंडा बनाते हो, अभी भस्म कर दूंगा।
अरे नहीं नहीं, आप गलत समझे या हजरत, मैं अपने बाप के लिए कह रहा था, दूसरी शादी करने वाले हैं।
अरे जाते हो या,
मुजाविर उठता हुआ बोला। सरकार, पुलिस आपको बेहद परेशान करने वाली है, इमरान हाथ जोड़कर विनम्र लहजे में बोला।
भाग जाओ,
पुलिस वाले गधे हैं, ए फकीर का क्या बिगाड़ेंगे?
फकीर के साये में दो खून हुए हैं।
हुए होंगे। पुलिस जज साहब की लड़की से क्यों नहीं पूछती कि वो एक मुश्तंडे को लेकर यहाँ क्यों आई थी?
अब या हजरत, पुलिस वाकई गधी है, आप ही कुछ रास्ता दिखाइए।
तुम खुफिया पुलिस मैन हो?
नहीं नहीं सरकार, मैं एक अखबार का रिपोर्टर हूँ, कोई नई खबर मिल जाएगी तो पेट भरेगा।
अच्छा, बैठ जाओ। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मकान जहाँ एक बुजुर्ग का मजार है बदकारी का अड्डा बने। पुलिस को चाहिए कि उसकी रोकथाम करो।
या हजरत, मैं बिल्कुल नहीं समझा, इमरान मायूसी से बोला।
मैं समझाता हूँ।
मुजाविर अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें फाड़ कर बोला,
14 तारीख को जज साहब की लौंडिया अपने एक यार को लेकर यहाँ आई थी और घंटों अंदर रही थी।
आपने एतराज नहीं किया? मैं होता तो दोनों का सर फाड़ देता। तौबा तौबा, इतने बड़े बुजुर्ग के मजार पर ये लाहौल वाला खुबत। इमरान अपना मुंह पीटने लगा।
बस खून का घूंट पीकर रह गया, क्या करूं? मेरे मुर्शिद मकान उन लोगों को दे गए हैं, वरना बता देता।
आपके मुर्शिद?
हाँ, हजरत अयाज रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे पीर थे। इस मकान का ये कमरा मुझे दे गए हैं ताकि मजार शरीफ की देखभाल करता रहूं।
अयाज साहब का मजार शरीफ कहाँ है? इमरान ने पूछा।
कब्रिस्तान में। उनकी तो वसीयत थी कि मेरी कब्र बराबर कर दी जाए, कोई निशान ही ना रखा जाए।
तो जज साहब की लड़की को पहचानते हैं आप?
हाँ पहचानता हूँ, वो कानी है।
हाय हाय, इमरान ने सीने पर हाथ मारा। मुजाविर उसे घूरने लगा। अब अच्छा हजरत, 14 की रात को वो यहाँ आई थी और 16 की सुबह को लाश पाई गई।
एक नहीं, अभी तो हजारों लाशें मिलेंगी, मजार शरीफ की बेहुरमती है।
मुजाविर को जलाल सा आ गया। मगर सरकार, मुमकिन है कि वो उसका भाई रहा हो।
हरगिज नहीं, जज साहब का कोई लड़का नहीं है।
तब तो फिर मामला हिप। इमरान अपना दायां कान खुजाने लगा। इमरान वहां से भी चल पड़ा और फिर कस्बे के अंदर वापस जा रहा था। 3 घंटे तक वो मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ करता रहा और फिर शहर की तरफ रवाना हो गया। जज साहब की लड़की ऐसे किस आदमी के साथ 14 तारीख की रात को उस खौफनाक इमारत में आई थी? क्या हुआ था उस खौफनाक इमारत में और क्या जानता है ये मुजाविर? आखिर इमरान उस मुजाविर से मिलकर क्या पता लगाना चाहता था? जज साहब की लड़की का इन लाशों से क्या वास्ता है? सुनने के लिए जुड़े रहिए गाथा से। सारे राज खुलेंगे अगले भाग में।